नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे ड्रुक ग्यालपो के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समारोह महामहिम जे खेनपो की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिससे ये और भी विशेष बन गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से आज शाही मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने थिम्पू में कालचक्र समारोह में भाग लिया, जिसमें भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राजा जिग्मे खेसर वांगचुक के साथ कालचक्र समारोह के लिए एक तख्ती का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कालचक्र पूजा के लिए पधारे भूटान के बौद्ध परिसंघ के प्रमुख जे खेनपो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिम्पू से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, थिम्पू।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश के साथ कल थिम्पू में बैठक के बाद भूटान की ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय मदद के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सहायता देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गैबरॉन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बोत्सवाना भारत को परियोजना चीता के अंतर्गत 8 चीते उपहार स्वरूप देगा। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इन चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सांसदों को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी तथा बोत्सवाना में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का दौरा करेंगी। बोत्सवाना के कई गणमान्य व्यक्ति भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। अंगोला की यात्रा संपन्न करने के बाद राष्ट्रपति कल शाम बोत्सवाना पहुंची। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन दो अफ्रीकी देशों की पहली राजकीय यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने इस आयोजन की मेजबानी के लिए सुश्री आनंद को बधाई दी और नए रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस द्विपक्षीय साझेदारी के और अधिक सुदृढ़ होने की आशा करता है। डॉ जयशंकर ने मेक्सिको के विदेश मंत्री डॉ जुआन रामोन डेला फुएंते से, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोड, ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला से भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली विस्फोट की घटना के हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की दो दिन की यात्रा से लौटते ही आज सीधे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सोमवार को हुए दिल्ली धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने निर्णायक बहुमत हासिल करने का दावा किया है। इस बीच ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न जिला मुख्यालयों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को आज सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। श्री धर्मेंद्र के परिवार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में मीडिया और जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहें न फैलाएं और उनकी निजता का सम्मान करें। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण केंद्र सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।